दूधनाथ सिंह, जन्म सन 1936 ईस्वी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बनकटे के भीतर घुसकर बाप बेटे दोनों थम गए और उन दोनों के बीच चलती हुई वह औरत भी। बस बस ही सऊ महतो ने फुसफुसा कर अपने बेटे से कहा। चोरबत्ती है ना? मरकटवा ने अपने बाप से पूछा। मैं जाता हूँ कथौली, देखता हूँ चनरमा सिंह माल फेरते हैं कि नहीं। शिव महतो बोले, अगर मने कर देंगे तो। मरकटवा बोला, हजारों के फेरे में आ जाएंगे और क्या, मने कर देंगे तो। शिव महतो ने मुंह बनाते हुए कहा। बेकार फजीहत में पड़े हो बाबू, मरकटवा ने बाप से सहानुभूति जताई। फजीहत? हमारा वंश डूबा जाए है और इन्हें फजीहत दिखाई दे रही है, शिव बोला। औरत अंधेरे में उन दोनों की बातें सुनती खड़ी रही। चोरबत्ती दय देव तब जाओ, मरकटवा अपने बाप से बोला। शिव महतो ने दोहर के भीतर से चोरबत्ती निकाली और बेटे को पकड़ा दी। देखना पहरे में ढील न हो, कहता हुआ वह नदी के कछार में उतर गया। लेकिन तुरंत वह फिर लौटा। मरकटवा ने खुरखुर की आवाज से सहम कर उधर देखा तो उसका बाप था। छान देना ठीक से, नहीं औरत जात बड़ी बिरंजी होती है, कहीं दगा दे गई तो, कहता हुआ वह फिर अंधेरे में गुम हो गया। नदी जहां उत्तर की ओर बांक लेती है, वहीं कोने में एक घना छोटा सा जंगल था। मकोय, पलाश, एकवन और बबूल के छोटे बड़े झाड़ झंखाड़ों से घिरा हुआ। बीच में नीम के दो बड़े बड़े पेड़ और एक विशाल काय बरगद जो सारे जंगल को ढांपे हुए था। उसकी बरोहें चारों ओर जमीन में धंस कर मोटा तना बन गई थी। उसी के नीचे नकटी दाई का स्थान था, सुनसान लेकिन दाई की मांग लाल सिंदूर से टिकी हुई। नकटी दाई उस इलाके के चोरों की पूजवान देवी थी। जंगल के भीतर और बाहर नदी के अरार तक चारों ओर बनकट की घनी झाड़ियां थी, इसलिए अगल बगल के गांव के लोग इसे बनकटा कहते थे। बनकटे में शाही सियार और खेंखर बहुतायत से रहते थे और बरगद पर रात में उल्टे लटके कादूर, गिलहरियां, कत्थई और पीले दुरंगे बर, माटा के झोंप और तमाम तरह के गिरगिटान। दिन में भी घनी साय साय और रात में खुरखुर, खटखट और बीच बीच में गादुरों की बनैली फड़फड़ाहट। मरकटवा ने चोरबत्ती जलाई तो चारों ओर भक से उजाला हो गया। उसने रोशनी घुमाकर जगह का जायजा लिया। रोशनी से चौंक कर झिंगुरों ने एकाएक बोलना बंद कर दिया। तरह तरह के कीड़े मकोड़े, पतंगे और हरे पीले टिड्डे घबरा कर इधर उधर करके सरके तो सूखी पत्तियों पर खरखर की आवाज हुई। अचानक एक खेखर घनी झाड़ियों के बीच से उछल कर निकली और उनकी तरफ दांत निपोड़ती खे खे करती हुई बनकटे के बाहर भागी। मरकटवा ने चोरबत्ती बुझा दी। बैठ जाओ हुई, और उसने कड़कती हुई आवाज में औरत से कहा और कमर में लपेटा हुआ लंबा सिंकड़ खोल कर निकालने लगा। यह सिंकड़ भी किसी हथियान सीन बाबू का हाथी बांधने के काम आता था और नकब के दौरान कभी शिव महतो के हाथ लगा था। औरत ने पल्ले की ओट से झांक कर देखा। हमने क्या बोला, सुनी नहीं? मरकटवा ने धमकी के लहजे में कहा। औरत वहीं जमीन पर बैठ गई। ऐसे नहीं, आराम से, मरकटवा ने उसे हल्के से पीछे को धकेल दिया। औरत झुंझलाई और उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। कुल्हों के बल गिरते ही उसका बड़ा सा पेट और आगे निकल आया। गोड़ आगे बढ़ाओ, मरकटवा बोला और उसने औरत का एक पैर पकड़कर आगे की ओर खींचा। औरत ने झट से अपने पैर सिकोड़ लिए। शांति शांति, मरकटवा बोला, डरो मत, हम कोई हरामी नहीं है। उसने औरत का पैर कड़े हाथ से पकड़कर आगे खींचा। औरत के पांव में गिलट के गुड़हरे थे। मरकटवा ने गुड़हरे में सिकड़ फंसाया और थोड़ी दूर जाकर उसका एक छोर बरगद की उभरी जड़ में फंसा कर जकड़ दिया। अब ठीक, उसने फंसे हुए सिकड़ को रोशनी में जांचा परखा। उसने देखा औरत की पिंडलियां खूब गोरी चिट्ठी हैं। दोगली है क्या रे, उसने अंधेरे में कहा और छनमनाई उसके मुंह से एक नफरत भरी हूं निकली। अगर दोगली नहीं है तो फिर इतनी साफ सुफ क्यों है, बोल दोगली है क्या? मरकटवा ने फिर अपना सवाल दोहराया। सुरत वाला होगा तू, तेरा बाप तेरी अम्मा सुरत वालीन, औरत ने झमक कर कहा। सुरत वाला यानी वर्णशंकर। वाह बड़ा सुरीला बोलती है, मरकटवा ने चुटकी ली। औरत इस पर कुछ नहीं बोली, गाली देगी तो थोबड़ा पीछे घुमा देंगे समझी, हमारा भी नाम मरकटवा है। उसने अंधेरे में मूंछों पर ताव दिया। औरत चुप, किसका पेट लिए फिर रही है? मरकटवा ने डिबिया में से खैनी निकाली और हथेली पर मलने लगा। तेरा तो नहीं है ना, औरत ने भड़क कर कहा। चुप बुजरी, मेरा कैसे होगा? उसने खैनी ठोंकी तो बरगद पर गादुर फड़फड़ा कर उड़े। किसने कहा था कि औरत बेसाह के लाओ हैं? औरत बोली, वो तो बाबू का धंधा है। मरकटवा पैर फैलाकर बरगद के एक दूसरे तने से सिर टिक गया। अरे ढोला पड़ेगा ढोला, देख लेना, औरत ने कहा। ढोला यानी कीड़ा। काहे सराप रही है, हमने कहा था कि हमल लेके पधारो, मरकटवा ने धीरे से कहा। तो काहे को लो आया तेरा बाप, हुई जांच परख लेता, तेरे पेट पर हाथ लगा के देखते, पतो हिलाने गए थे। पतो पुत्रवधु, बड़ा चला है पतो हिलाने, आदमी है कि बनर सांड, थूह, औरत ने पिच से जमीन पर थूक दिया। गाली बक रही है, भागोगी? मरकटवा ने शांति से धमकाया। और कैसे भोगते हैं? औरत बोली। लिखी है तेरी गज्जन, मरकटवा को जैसे मजा आ रहा था। माचिस है क्या? औरत ने सहसा पूछा। माचिस क्या करेगी? मरकटवा चौकन्ना हो गया। हाथ पैर गला जा रहा है, आंख फूटी है तुम्हारी, औरत ने कहा। फगुनहट है और तेरा हाथ पैर गल रहा है, मरकटवा बोला। लेकिन फिर उसे ध्यान आया, चलते बखत अम्मा ने उसकी चद्दर भी झपट ली थी। ओह ये तो ज्यादती है, बाबू को तो कुछ व्यापता नहीं, लेकिन अम्मा वो तो औरत है, लेकिन आजकल औरतें ही औरतों से ज्यादा खार खाती हैं। कितना दरवेशा बेचारी को, और उस पर भी इस हालत में। हम ही लोगों के डर के बारे में तो मिनकी नहीं गरीब नहीं, एक हाथ में माई मुंह में माटी ले लेती, क्या दुनिया है। मरकटवा ने थोड़ा पछतावे के भाव से सोचा, ऐसी सुभेक मेहरारू एक ठो हमल के खातिर, किसी का भी हो उसको कैसे दोख लगावें। हमारा मन तो था एक ठो दूसरे का भी पल जाता, ज्यादा चिल्लाते लोग तो जात कुजात करते, बाकी ऐसी नयन सुखनार हाथ से तो न जाती। अरे है कि नहीं मरकी लो ना, औरत ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। है मरकटवा ने अब की गाली पर ध्यान नहीं दिया, वह उठा और चोरबत्ती के उजाले में खरपतवार बटोरने लगा। फिर उसने आग जलाई और बोला, आज जाओ। औरत सीकड़ घसीटती हुई अलाव के पास आई और बैठ गई। आग की लपटों में उसने अपनी दोनों हथेलियां डाली और निकाली, फिर सीकड़ वाला पैर और फिर दूसरा। धुएं से बचने के लिए उसने अपनी गर्दन पीछे की तो माथे का आंचल सरक गया और रोशनी में उजला हड़ीला मुख झलक उठा। मरकटवा ने पहली बार उसे इस तरह खुला खुला देखा। उसे अपने माँ बाप पर गुस्सा आने लगा। मन में उमड़ती हुई गालियों को उसने रोका और जैसे दुख और बेबसी से मुरझा गया। जल्दी से ताप लो तो आगे बुझा दें, मरकटवा ने नरमी से कहा। काहे? औरत ने पूछा। उजियारा देखकर उधर उस पार के गांव गिराव के लोग समझेंगे बनकटे में चोर चिकोर कौनो प्लान बना रहे हैं। तो और का हो तुम लोग, चोर चिकोर नहीं हो, डोम हो, हथियार हो, उससे भी बढ़ के हो। अच्छा बस हमें हमार दोस्त का दोस्त बोल तो। अरे तू का मर्द नहीं है, अपनी अम्मा का दूधू पीता है, चाहे बेंच कीन के ही सही, हम तेरी घरवाली बन के आई थी और तू देखता रहा, निकल जाने देता, हम चली जाती, कतहू नदी इनार फान जाती, बाकी तू तो सच्चा भड़ुआ है। उस हरामी के कहे से हमें इस जंगल झाड़ में सीकड़ से छाने है, हम कौनो जानवर है कि भाग जाते, और फिर पेट में 9 महीने का बागड़ बिल्ला लेके का हम रेल बन जाते कि हवाई जहाज बन जाते, का बन जाते कि उड़न छू हो जाते, बोल, औरत एक सुर से बोले जा रही थी। बाबू के अपन पैसा वापिस चाही, बस उ जौन कहें तौन हम किया, बाकी हमसे पूछे तो तोसे का पूछी, तू तो पूछे लायक हो। औरत ने एक बड़ी सी फोह निकाली और अपना आंचल माथे पर खींच लिया। शिव महतो से बड़ा सातिर खिलाड़ी इस धंधे में दूसरा न था। अब तो उम्र गुजर गई, चढ़ती जवानी में ही वह इस धंधे में आ गया था। अपने ही गांव के लेड़ी महतो उनको अपना गुरु बाबा मानता है और धंधे पर रवाना होने से पहले गुरु बाबा की अवसेरी लेता है। चोरी का पहला पाठ लेड़ी महतो ने कुछ यूं पढ़ाया था, अपने गांव जवार में चोरी कभी मत करो, हितई नतई बक्से रहो, फंस जाओ तो आराम से जेहल काटो, जेहल में शांति से रहो, हमेशा मरियल दिखो, दूसरे के आगे दीनहीन बन के दांत चियारते रहो, कभी शान मत बखारो, कभी सहको मत, वगैरह वगैरह। तो इस शिक्षा के बाद लेड़ी महतो ने सबसे पहले शिव महतो को गाय बैलों की चोरी में लगाया। लेड़ी महतो का कहना था कि गाय गोरु छोड़ने से हाथ साफ होता है, बदन में फुर्ती आती है, चोर की बुद्धि खुलती है। लेड़ी महतो कहते थे कि पक्के चोर को गु खई के कौए की तरह होना चाहिए, गु खौ के कौए की तरह होना चाहिए, माने जितनी दफे गलती करेगा उतना ही पोढ़ा होगा। कुछ ही दिनों में शिव महतो बैल खोलने में माहिर हो गया। लोग अपने बैलों के आसपास खटिया बिछा कर लेटे रहते और शिव महतो खूंटों पर से उनको गायब कर देता। रातों रात गंगा हिलाकर उस पार पतलो के जंगल में बैल छिपा दिए जाते। फिर शिव महतो मुस्की काटता हुआ मालिक के द्वारे हाजिर होता। तनी इधरे से ही तई जा रहा था, सोचा बड़का मालिक के दर्शन करते चले, शिव महतो बोलता। बैलों के मालिक शिव महतो का आना वरदान जैसा लगता। वह शिव महतो के सामने अपना दुखड़ा रोता, सिर झूठ मूठ ही एक आध दिन के लिए गायब हो जाता, फिर लौट आता। मालिक पनहा तनी भारी पड़ेगा, वह बोला। कौनो बात नहीं, बैलों का मालिक बोलता, फिर फुसफुस करके फिरौती की रकम तय होती। राव और नमक खाए हैं, शंकर जी की सवारी खोजिए के दम लेंगे, शिव रुपए गठियाता हुआ कहता। फिर दो चार दिनों में ही दियर से बैलों को हाँक कर मालिक के दरवाजे पर। उसके बाद गुरु बाबा ने शिव महतो को नकब लगाना सिखाया। माटी के घर में सेंध कैसे मारो, ईंट के घर में कैसे मारो, सब अलग अलग। एक बार जब दीवार में छेद करके शिव ने अपनी मूड़ी भीतर डाली तो गुरु बाबा ने उसके पैर पकड़कर बाहर खींच लिए। अबे मरेगा क्या, गुरु बाबा ने कहा। कैसे, शिव की समझ में नहीं आया। सेंध में पहले पैर डालो, फिर धड़, फिर मूड़ी, मूड़ी पहले कभी नहीं। मान लो अंदर कोई जाग रहा हो और मूड़ी पहले डाल दी तो जम कर डंडा लग गया, समझो। और अगर पैर डालोगे तो पैर पर तो पड़ेगा, दोस्त यार खींच कर बाहर निकाल ले जाएंगे, गुरु बाबा ने समझाया। इसके बाद तो शिव एकदम पक्का हो गया। पूरी अरियात करियात गंगा पार बिहार तक में उसका डगडगा बज गया। बड़े बड़े शातिर चोर उससे जलने लगे। हाथ हो तो शिव महतो जैसा, इतनी सफाई से निकब लगाता है कि चिड़ई चुरुंग को भी पता नहीं चलता। जितने सारे कटहे कुकुर हैं सब शिव महतो का हाथ चाटने लगते हैं। पूरे गांव को नकटी दाई वाली जड़ी सुंघा देता है शिव महतो। लोग सोते हैं कि मुर्दा हो जाते हैं। फिर तो शिव महतो की शागिर्दी के लिए होड़ मच गई। तब गुरु बाबा यानी लेड़ी महतो ने एक दिन अपने पट्टे को दरबार हाजिर किया। तुम सहक रहे हो शिव, लेड़ी महतो ने कहा। शिव महतो गुरु बाबा के सामने चुप ही रहा। उसने सोचा बुढ़ऊ बौरा गए हैं, सिद्धि कुछ कम हो रही है, साबित चोर को हमेश गुमनाम ही रहना चाहिए, लेड़ी महतो ने चीलम पर दम मारते हुए कहा। शिव महतो ने समझ लिया कि बुढ़ऊ को सब खबर है, नकटी दाई नाराज है, लेड़ी महतो ने धुआं छोड़ते हुए कहा। आप गए थे महाराज का, महाराज, शिव महतो डर गया। नहीं, सपन आया था, लेड़ी महतो ने कहा। तब का करें गुरु बाबा, अय्या दें, शिव महतो की हवा खिसक गई। हमिता बहुत है तुम में, हमिता छोड़ दो, संगी साथी कम करो, बहुत बोम मत मारो, इलाका बदर हो जाओ, लेनी महतो ने समझाया। शिव महतो ने गुरु बाबा से विदा लेते हुए सोचा, बुढ़ऊ साहित इलाका किसी और को नजर करना चाहते हैं, फिर भी गुरु का कहना तो मानना ही पड़ेगा। उसने सोचा नकटी दाई को बकरा करा चढ़ाएगा। वह सीधे बनकटे में गया और दाई के थान पर शिरदा लेने लगा। उसने बार बार मुड़ी पटकी और बकरे कराह का घूस भागने लगा। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि पुलिस के सिपाही उसके चारों ओर गिरदा बांधे खड़े हैं। थाने में शिव महतो की खूब जम के कुटाई हुई, बोरा ओढ़ा के उसे मजे में थूरा गया। दूसरे दिन जब हथकड़ी बेड़ी में झनझन करता हुआ शिव महतो कोर्ट में हाजिर हुआ तो उसकी एक आंख काले गुमड़े के भीतर गुम थी। वह जब अपनी इकली आंख से जज को देख रहा था तो लगा जज साहब उसको देखकर मुस्किया रहे हैं। हमारी भी कोई शख्सियत है, शिव ने सोचा और छाती फुलाकर खड़ा हो गया। कोर्ट के बाहर निकलते ही पुलिस वालों के बीच वह अकड़ कर चलने लगा। कई वारदातों को मिलाकर शिव महतो को 7 बरिस की जेल हुई। लोगों का कहना था कि लेनी महतो ने ही उसे पकड़वा दिया था, बांट बखरे का मामला था। जेहल काट के शिव महतो लौटा तो सीधे गुरु बाबा के यहाँ। गुरु बाबा ने हाल चाल नहीं पूछा, उठकर चीलम चढ़ाने लगे। बड़ी देर तक गुड़गुड़ी खींचते रहे, तब शिव को थमाया। शिव महतो ने एक दो फूंक लेकर गुड़गुड़ी दीवार के कोने में टिका दी और इंतजार करने लगा। नकटी दाई ने फिर सपन दिया है, लेनी महतो एकाएक बोले। शिव चुपचाप उनका मुंह ताकता रहा, सोचता रहा कि न जाने कब कौन सी बला आने वाली है। कि तुम अब दूसरा धंधा आजमाओ, लेडी महतो ने कहा। हम महाराज, हम? शिव ने अपनी तरफ इशारा किया। हाँ, तुम्हारे लिए ही, वैसे हमने उस धंधे में खुद को भी हाथ साफ किया है। इधर ठीक ठाक है, नफा भी रहा, थोड़ा सजग रहो तो काम अच्छा जाता है। बिरादरी और गैर बिरादरी दोनों का भला होता है, सबका भला होता है, लेनी महतो ने कहा। शिव महतो जैसे उपनिषद कालीन किसी ऋषि आचार्य के चरणों में बैठा हो, उसे महाजिज्ञासा ने घेर लिया। अब जैसे देखो, लेनी महतो ने दम मारते हुए कहा। अपनी ही बिरादरी के कितने दुआस दिया है, कितने ओछड़ पोछड़, कितने ऐचे ताने लंगड़ लोच, उबरे कुबरे कितने अधेड़ हो गए हैं, औरत की बू बास नहीं पाए, कितनों की घरवालियां उन्हें छोड़ के परा गईं, डोमा की औरत जन्म की कुड़ुक, कभी बच्चा लड़का से रही, और बिरादरी में ही कहे जाते हो। कौनो टोला जाओ, नजर भिड़ाओ तो लौक जाएगा। कोई राने में ही कितने बोझ ठूठ हैं, लेकिन मजा मारने का मन अभी जस का तस। मेहरारू देखते ही 7 हाथ की जीभ बाहर आ जाती है, और अहिराते में वो बिसनथवा है, जिगनी भर मुग्धर भांसता रहा। दंड बैठक कुश्ती, गर्दन पर धूल रुमलने के सिवा और कुछ नहीं किया। अब बुढ़खाउस लगी है, अब कहता है कैसी भी हो, राण बहेर उड़हरी फुड़हरी, बस एक ठो मेहरारू चाहिए महाराज। वो बौरहवा ठाकुर है, देखते जानते हो, निर्बंसी परम हरामी, जमीन जयजात किसको देंगे, लबर पाणे हैं, ऊखी रह डाणे अरारे मेहरारों की गम्मक सूंघते फिरते हैं। 10 बीघा खेत बारी है, वंश चाहिए, आउर बाउर जैसे भी भगवान दे दें, काफी बड़ा बाजार है, रकम रकम की सेल है। लेनी महतो चीलम की आगे उटकारने लगे। लेकिन कैसे होगा महाराज, शिव महतो ने डरते डरते कहा। हुनर चाहिए, लेनी महतो हंसे। हुनर का महाराज, कोनो गाय गोरु तो है नहीं कि हका ले जाएंगे, शिव महतो बोला। इसीलिए तो हुनर चाहिए, लेनी महतो ने उसे कनखियों से ताका। संभव नहीं है गुरु बाबा, शिव ने बात बुझने के लिए इनकार और असमर्थता का दांव फेंका। समझ नहीं रहे हो, इसमें दोनों ओर से नफा है। जिसे मेहरारू चाहिए वह तो पूजावन चढ़ाएगा ही, जो बेचेगा उसे भी तो लालच है, लेनी महतो ने चीलम की सिट्टी गिराते हुए कहा। माने चोरी नहीं है, माल लगाओ, ज्यादा माल पैदा करो, माने कारोबार है महाराज, शिव महतो चहक कर बोला। नहीं, खरीद फरोख भी है, कारोबार भी है, चोरी चमारी भी है। अब हुनर इसीलिए तो चाहिए कि काम कैसे बनेगा, कैसे फुसलाओगे, गुड़ मिठाई से कि पैसा रुपया देके, कि रोग आके कि नौटंकी फैला के, कौन सा चारा कामयाब होगा, केचुआ की आटे की गोली, कैसे मछली फंसेगी, सवाल ए है। इसलिए आदमी का दिमाग पढ़ना पड़ता है, इसीलिए तो हुनर है। छोटी बच्ची हो तो गुड़ मिठाई दे के फुसलाओ, पता करो कि किस घर में कौन औरत दुख त्रास में है, मेल जोल बढ़ाओ, उसके दुख त्रास से निजात दिलाने के सपने दिखाओ, साड़ी ब्लाउज दो, टटका मीठा दो, मीठा बोलो, बेटी मेहर बेचने वाले की नष्ट होते रहो, लालच दो, पैसा खिलाओ, गांव गिराव में कितने घर दुख तकलीफ करज कुआम में है, आदमी क्या चाहता है, तोड़ा फाफर, थोड़ा हंस लेने की जगह, थोड़ा मौज मजा, वह हमेशा की खटान नहीं चाहता, तो इसीलिए हुनर है। लेनी महतो चुप हो गए, तो सिखाइए ना महाराज, शिव महतो गुरु बाबा के और नगी खिसक आया। पहले जवार में घूमो, माल बाजार का पता करो, मेल जोल बढ़ाओ, देखो कि तुम्हें कुछ अंदाज लगता है कि नहीं, लौट कर हमें रपट दो, फिर तुम्हें धंधे पर ले चलेंगे और फिर तुम देखोगे मेरे हाथ की सफाई, लेनी महतो ने कहा। गुरु बाबा ने अपने चेले को कुछ ही दिनों में एकदम पट्टा बना दिया, गुरु गुड़ ही रह गए, चेला चिन्नी हो गया। शिव महतो के लिए अब यह एक खेल की तरह था, हाथ की सफाई थी महज, वह इस तिजारत का बादशाह था, जादूगर था वह, पूरा जादूगर, न जाने किस हिमकत से नादान बच्चियों लड़कियों औरतों को फुसला कर बहकाता उठाता या खरीद फरोख्त करता है कि लोग हैरत में पड़ जाते। इसमें 5 बरिस की कन्याओं से लेकर 40-45 की अधेड़ औरतें तक होती, शर्त सिर्फ एक थी कि औरत कुड़क न हो, बच्चा जन्म सके। जरूरतमंद लोग रात के अंधेरे में सिर्फ शिव महतो की चिरौरी करते, अपनी जरूरतों की तफसील बतलाते, बैना बट्टा देते और फिर देखते कि उनके घर में एक दिन औरत के मुखड़े का उजियारा फैला है। शिव महतो कभी रेल से, कभी बस से, कभी ट्रक ड्राइवर की बगल में बैठकर, कभी बैलगाड़ी से, कभी खड़खड़े से, कभी पैदल, कभी तीरथ घाट से, तीर घाट से तो कभी मेर घाट से, कभी जंगल के पिछवाड़े से तो कभी ताल हेल कर, कभी नदी के कछारे कछारे तो कभी हबड़े में से, कभी नाव से तो कभी किनबोट से, यानी एक पक्के खिलाड़ी की तरह हर बार वह अपना मार्ग बदल देता। का हो शिव, ये कौन है, कोई परिचित अगर रास्ते में पूछ बैठता, हमार छोटकी छौड़ी है सरकार,